ॐ शांति ॐ शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने बच्चों से बहुत प्यार से मीठी मीठी रू रुहान की है। बाबा ने कहा, तुम बच्चे बाप का स्वागत करते हो, लेकिन बाबा तुम बच्चों का बहुत बड़ा स्वागत करते हैं। अब आप सोचो, हमारे स्वागत में और बाप के स्वागत में कितना अंतर होगा। बाबा आते हैं, दादियां आती हैं, क्या करेंगे, छोटा सा स्वागत कर देंगे, गुलदस्ता दे देंगे, माला पहना देंगे, कुछ ना कुछ दे देंगे, छोटी छोटी गिफ्ट दे देंगे। लेकिन बाबा कहते, बाबा कौन सा स्वागत करते हैं, तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देते। इतना बड़ा स्वागत तो दुनिया में कोई कर नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा कि देखो, आजकल कहते हैं ना, पहले बाबा मुरली के अंदर कभी कहते हैं कि पहले गॉडरेज का ताला लगा हुआ था, और आज बाबा ने कहा माया ने तुम बच्चों को बेसमझी का ताला लगा दिया है। वैसे भी देखते हैं, जब कोई बात नहीं समझते कहते तुम बेसमझ हो क्या, तो बेसमझ में जो कुछ नहीं समझते, तो माया ने ऐसा किया, एक तो बेसमझी का ताला लगा दिया है, दूसरा माया ने क्या किया, बहुत बड़े पिंजरे के अंदर डाल दिया है। अब उस पिंजरे से बाप आकर के तुम बच्चों को निकालते हैं। और तीसरी बात बाबा ने कहा, जिन बच्चों का ये ध्यान रहता है, पुरुषार्थ रहता है कि हमको अपने जीवन के अंदर दैवी गुण धारण करने हैं, तो उनकी क्या क्या निशानियां होंगी और क्या क्या पुरुषार्थ होगा वो भी सुनेंगे। और चौथी बात बाबा ने सेवा के क्षेत्र में हर छोटी बात की बाबा करेक्शन करते हैं। तो बाबा ने मैगजीन, उस समय बाबा के टाइम पर मैगजीन निकली थी, उसमें कई बातों की बाबा ने करेक्शन की है। तो अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य की। आज की तारीख है 20 अप्रैल 2024। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे तुम योग बल से इस खारी चैनल को पार कर घर जाना है। मीठे बच्चे तुम्हें योग बल से इस खारी चैनल को पार कर घर जाना है, इसलिए जहां जाना है उसे याद करो, इसी खुशी में रहो। मीठे बच्चे तुम्हें योग बल से इस खारी चैनल को पार कर घर जाना है, इसलिए जहां जाना है उसे याद करो, इसी खुशी में रहो। हम अभी फकीर से अमीर बनते हैं। प्रश्न है, दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर जिन बच्चों का ध्यान है उनकी निशानी क्या होगी। दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर जिन बच्चों का ध्यान है उनकी निशानी क्या होगी। उत्तर है, उनकी बुद्धि में रहता, अब कितनी बातें वो नोट कर सकते हैं, उनकी बुद्धि में रहता जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख दूसरे करेंगे। पहला है, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख दूसरे करेंगे। फिर दूसरी बात, कभी किसी को तंग नहीं करेंगे। तीसरी बात, उनके मुख से कभी उल्टा सुलटा शब्द नहीं निकलता। चौथी बात, मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देंगे। पांचवी बात, बाप समान सुख देने का लक्ष्य है तब कहेंगे कि दैवी गुणों के सब्जेक्ट पर ध्यान है। कितनी बातें बाबा ने बता दी, फिर से रिपीट करूं या नोट कर लिया है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, और याद की यात्रा भी सिखला रहे, दो बातें, एक तो समझा रहे हैं, दूसरा याद की यात्रा भी सिखला रहे हैं। याद की यात्रा का अर्थ तुम बच्चे समझते होंगे, भक्ति मार्ग में सब देवताओं को शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु ये पता ही नहीं था कि याद से ही विकर्म विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में याद किया किस भाव से, ये मिल जाए, ये मिल जाए, बच्चा आ जाए, प्रॉपर्टी आ जाए, ये समस्या चले जाए, ये कभी नहीं सोचा कि हमारे विकर्म विनाश होंगे, परंतु ये पता नहीं था कि याद से विकर्म विनाश होंगे। बच्चे जानते हैं कि बाप पतित पावन है, वही पावन बनाने की युक्ति बताते हैं, आत्मा को ही पावन बनना है, आत्मा ही पतित बनती है। बच्चे जानते हैं बाप ही भारत में आकर याद की यात्रा सिखलाते हैं, और कहीं पर सिखला न सके। बाबा आते हैं भारत में, यहीं आकर के याद की यात्रा सिखलाते, और कहीं पर ऐसी बात सिखला भी नहीं सकते। जिस्मानी यात्राएं तो बच्चों ने बहुत की है, द्वापर से लेके करते चले आए, अंत तक भी करते रहे हैं। जिस्मानी यात्राएं तो बच्चों ने बहुत की है, ये यात्रा सिर्फ एक बाप ही सिखला सकते हैं। अब तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि माया के कारण सबकी बुद्धि को क्या हो गया, बेसमझी का ताला लग गया। बेसमझी का ताला किस लिए लगा, माया के कारण। अब तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि माया के कारण सबकी बुद्धि को बेसमझी का ताला लगा हुआ है। अभी बाप द्वारा तुमको मालूम पड़ा है कि हम कितने समझदार, धनवान और पवित्र थे। समझदार भी थे, धनवान भी थे और पवित्र थे। हम सारे विश्व के मालिक थे, अब हम फिर से बन रहे हैं। बाप कितनी बड़ी बेहद की बादशाही देते हैं, लौकिक बाप करके लाख करोड़ देंगे, वो देगा भी, चार बातें भी कहेगा, देगा तो चार गाली भी देगा, देते टाइम बड़ी मुश्किल होती है, बच्चे लड़के भी लेते हैं, वो तो लाख करोड़ दे देगा, लेकिन बाबा क्या देते हैं, विश्व के बादशाही। लौकिक बाप करके लाख करोड़ देंगे, यहाँ तो मीठा, अब सुनो कौन सा बाप, मीठा बेहद का बाप, बेहद की बादशाही देने आए हैं। इसलिए तुम यहाँ पढ़ने आए हो, किस लिए आए हैं, बेहद की बादशाही लेने के लिए। उसके लिए बाबा कहते तुम यहाँ पढ़ने आए हो, किसके पास आए हो, किसके पास आए हो, बेहद के बाप के पास। बाबा अक्षर मम्मा से भी मीठा है, अब डबल बाबा है ना, शिव बाबा भी है, ब्रह्मा बाबा भी है, शिव बाबा हमारी माँ भी है, शिव ना ब्रह्मा बाबा हमारी माँ भी है, लेकिन बाबा कहते हैं बाबा अक्षर मम्मा से भी मीठा है। भाई मम्मा पालना करती है, परंतु बाप तो फिर भी बाप है, वो पालना करती, लेकिन वर्षा किससे मिलता है, बाप से मिलता है ना, तो इसलिए बाबा कहते बाप तो फिर भी बाप है। जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, तुम सदा सुखी और सदा सुहागिन बन रहे हो, सदा सुखी और सदा सुहागिन बन रहे हो। बाबा हमको फिर से क्या बनाते हैं, ये कोई भी नई बात नहीं है, पहले भी बनाया था, अभी भी बना रहे हैं। बाबा कहते ये कोई नई बात नहीं है, गायन भी है, जैसे गायन करते ना, एक कहानी भी आती, एक व्यक्ति था सुबह को अमीर बन जाता था, रात को फकीर हो जाता था। बाबा कहते गायन भी है, सुबह को अमीर और रात को फकीर, गायन भी है, सुबह को अमीर था रात को फकीर था। तुम भी सुबह में अमीर और बेहद की रात में आकर फकीर बन जाते हो। बाबा रोज रोज स्मृति दिलाते, बाबा के पास कोई भी आता था ना, अगर उसका नाम फकीर चंद है तो बाबा नाम बदल देते। बाबा कहते ये नाम ही नहीं रखना चाहिए आपको, इसलिए बाबा उसका नाम, बाबा कहते स्मृति रहेगी ना कि हम कितनी ऊंची बादशाही ले रहे हैं। तो बाबा रोज रोज स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुम कल विश्व के मालिक अमीर थे, आज तुम फकीर बन पड़े हो। अब फिर सुबह आती है तो तुम अमीर बन जाते हो, कितनी सहज बात है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, किस बात की? अमीर बनने की। अमीर बनते हो, कितनी सहज बात है। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए अमीर बनने की। ब्राह्मणों का दिन और ब्राह्मणों की रात, अब दिन में तुम अमीर बन रहे हो और बनेंगे जरूर, गारंटी बन रहे हो, लेकिन बनेंगे भी जरूर और बनेंगे भी जरूर, परंतु नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते हैं ये वह खारी चैनल, अब खारी चैनल देखिए कौन सी है, ये खारी चैनल, कितने दुख है, कितने अशांति है। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया क्या है, खारी चैनल है। अब बाप कहते हैं अब ये खारी चैनल है जिससे तुम ही पार करते हो योग बल से। जहाँ जाना है उनकी याद रहनी चाहिए। हमको जाना है अपने घर, बाबा खुद आया है हमको लेने के। एक है जाना है, एक है कोई गाइड मिले। बाबा आए हैं हमको साथ ले जाने के लिए, बाबा खुद आए हैं हमको लेने के लिए। बहुत प्यार से समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम ही तो पावन थे, तुम ही तो कैसे थे, क्या हो गया, तुम ही पावन थे, 84 जन्म लेते लेते तुम पतित बने हो, फिर पावन बनना है। पावन बनने का और कोई भी उपाय नहीं। तुम जानते हो कि पतित पावन आते हैं और तुम उनकी श्रीमत पर चल पावन बनते हो। तुम बच्चों को बहुत खुशी होती है, किस बात की? कि हम जाएंगे अमीर बनेंगे, नई राजधानी में जाएंगे, हम वहां जाकर के ये पद पाएंगे। तुम बच्चों को बहुत खुशी होती है कि हम ये पद पाएंगे। बाप कहते हैं तुम 21 जन्मों के लिए सुखी रहेंगे, एक तो पद भी पाएंगे और 21 जन्मों के लिए अमीर भी रहेंगे और सुखी रहेंगे। बाप सुख धाम का और रावण क्या करता है, दुख धाम में ले जाते हैं। बाप सुख धाम का और रावण दुख धाम का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे अभी जानते हो, क्या जानते हैं, कि रावण हमारा पुराना दुश्मन है जिसने तुमको 5 विकारों रूपी पिंजरे में डाला। देखा पिंजरा कितना बड़ा, फंसे पड़े निकलते ही नहीं है, एक बार निकलते हैं फिर आ जाते, फिर आ जाते, कोई न कोई प्रकार के पिंजरे की वो जो वायर है वो चिपकी पड़ी है। तो बाबा कहते हैं जिसने तुमको 5 विकारों रूपी पिंजरे में डाला है, बाप आकर के निकालते, इस पिंजरे से बाहर निकालते, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, एक बार उड़ के आ जाएंगे फिर दूसरी बार जाके पिंजरे में बैठ जाते, फिर बाबा को निकालना पड़ता, फिर पिंजरे को पकड़ के बैठे रहते, क्या क्या करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप आकर के निकालते हैं, जितना जो बाप को याद करते हैं उतना औरों को भी परिचय देते हैं। याद न करने वाले, उसकी निशानी बाबा, याद न करने वाले देह अभिमानी होंगे। वह न तो बाप को याद कर सकते न बाप का परिचय दे सकते, देह अभिमान होगा ना, बस सारा टाइम कहेंगे क्या करें, फिर सेवा करनी होगी कहेंगे टाइम नहीं है, कैसे हो सकता है। तो बाबा कहते ना तो बाप को याद कर सकते हैं ना बाप का परिचय दे सकते हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं, घर से यहाँ आए हैं, भिन्न भिन्न पार्ट बजाने, सारा पार्ट कैसे बजता है ये तुम्हारी बुद्धि में है। जिनको पक्का निश्चय है वह आकर यहाँ रिफ्रेश होते कितने होंगे, क्योंकि बाबा के घर जाएं, बाबा के घर में जाएं, यहाँ आकर के रिफ्रेश होना, चाहे एक रात के लिए आते हैं, चाहे एक घंटे के लिए आते हैं, कहते बाबा के घर जरूर जाना है, क्योंकि बाबा शक्ति देते ना, तो बाबा कहते जिनको पक्का निश्चय है वह आकर के यहाँ रिफ्रेश होते हैं। ये कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है जो टीचर के साथ रहना। अब सुन लो, कई कहते हम तो यही रह जाए नौकरी छोड़ करके, बाबा कहते ऐसी पढ़ाई नहीं जो को, हमको तो यही रहना, आओ रिफ्रेश हो फिर जाओ, जाकर के पढ़ाई का मनन करो, सुनाओ फिर आओ। ये कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है जो टीचर के साथ रहना, नहीं, अपने घर में भी रहते भी पढ़ाई कर सकते हो। सिर्फ एक हफ्ता अच्छी तरह समझो, फिर ब्राह्मणिया कोई को एक मास में, कोई को छह मास में, कोई को 12 मास के बाद ले आती है। बाबा कहते हैं निश्चय हुआ और भागा, बाबा ने नियम बनाया हुआ था पहले पहले। बाबा कहते अगर निश्चय है तो लाओ, कई कई ऐसे होते जिनको निश्चय नहीं है तो बाबा देखते ब्राह्मणी उसको टीचर मिस गाइड उसको ले आए तो बाबा को अच्छा नहीं लगता था। फिर बाबा कई कई बच्चों को देखते थे जिनको निश्चय है, वारिस बुद्धि है, वारिस बच्चा है, तो बाबा कहते उसकी निशानी हुई, निश्चय हुआ और वो बाबा के पास भागेगा। राखी भी बांधनी है कि हम बेकार में नहीं जाएंगे। हम शिव बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं, शिव बाबा ही कहते हैं बच्चे तुमको निर्विकारी जरूर बनना है, अगर विकार में गए तो की कमाई चट। एक बार शिव जब राखी का त्योहार आया, बाबा बांधते हैं, शुरू शुरू में क्या हुआ कि एक सेंटर की बहन ने बाबा को राखी भेजी, तो बाबा को राखी भेजी तो बाबा ने क्या किया, 1 रुपया भेजा सेंटर पर उसके खर्चे, और कहा कि इसका ममरा लेकर के वो मीठी चक्की बनाते ना वो बनाकर सब बच्चों को खिलाना। दूसरे सेंटर वाले को जब पता पड़ा अरे बाबा ने राखी की खर्ची भेजी है, तो उसने दूसरे साल दूसरे सेंटर के बहुत सी टीचर बहनों ने बाबा को राखी भेजी। बाबा ने कहा क्या समझा है, मैं अपवित्र हूँ क्या, तुम लोग मेरे को क्यों राखी भेजी है, आज के बाद राखी नहीं भेजना। तो बाबा कहते किसको कॉपी नहीं करना है, तो किसी को कॉपी करना, देखा देखी करना बाबा को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। तो बाबा कहते मैं तुमको राखी बांधना, अभी तो भल बाबा को प्यार से बांधते राखी भल बांधो, लेकिन साथ साथ अपनी प्रतिज्ञा को भी रिमाइंड करना है। शिव बाबा ही कहते बच्चों तुमको निर्विकारी जरूर बनना है, अगर विकार में गए तो की कराई कमाई चट, 100 गुना दंड पड़ जाएगा, 63 जन्म तुमने गोते खाए हैं, अब कहते हैं पवित्र बनो, मेरे को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, आत्मा भाई भाई है। भल बाबा कहते हैं एक दिन में भी तीर लग सकता है, जो वारिस क्वालिटी होगा ना वह सुनेगा कहेगा बस यही मेरा बाबा है, तो बाबा कहते भल एक दिन में भी तीर लग सकता है परंतु समझ से काम लेना, ऐसा नहीं एक दिन आया बाबा के टाइम पर ऐसा होता है, बाबा दोनों शायद भल उसको निश्चय बुद्धि हुआ लेकिन और धारणा है कि वो भी तो सारी बितानी है ना, तो बाबा कहते थे समझ से काम लेना, ऐसे नहीं उसको निश्चय हुआ। और बाबा को कई बार बाबा को लिखते बाबा हमने ज्ञान सुना है इतना पक्का निश्चय बुद्धि वो बच्चा है, बाबा कहते बिल्कुल नहीं, बाबा तो जानते थे ना कि हर एक की रग क्या है, इसलिए बाबा कहते हैं परंतु समझ से काम लेना है, तुम ब्राह्मण हो सबसे उत्तम, ये तुम्हारा बहुत ऊंचा कुल है, वहाँ कोई सत्संग आदि होते नहीं, सत्संग भक्ति मार्ग में होता है, तुम जानते हो सत का संग तारे, सत का संग मिलता ही तब है जब सतयुग की स्थापना होनी होती है, ये किसकी बुद्धि में नहीं आता कि सत्संग कब हो सकता है, सत का संग कब मिलता है, जब बाबा कहते सतयुग की स्थापना होनी, ये किसकी बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि बुद्धि को ताला लगा हुआ है, अब सतयुग में जाना है, सत का संग मिलता ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। वह गुरु लोग तो संगम युगी है नहीं, ना संगम युग को जानते हैं ना वो संगम युगी हैं। बाबा जब आते हैं तो बाबा कैसे बुलाते हैं, कैसे बुलाते बाबा हैं? उस दिन भी बाबा ने कहा ओ बेटे, आज बाबा बेटे बेटे करके, कभी बाबा कहते बच्चे आओ बच्चे आओ, शिव बाबा कहते थे बच्चे आओ, ब्रह्मा बाबा कहते थे बच्ची आओ बच्चा आओ, लेकिन शिव बाबा बोलते बेटे आओ बेटे आओ, आत्मा रूप में सब भाई भाई हैं। तो अब बाबा जब बुलाते हैं, बाबा जब आते हैं तो बेटा बेटा कह बुलाते। जो घर में भी बच्चा लाडला होता है ना, चाहे लड़की हो, उसको सब कहेंगे बेटा इधर आओ बेटा इधर आओ। तो बाबा सबको बेटा बेटा कह बुलाते हैं। उन गुरु लोगों को तुम बाबा थोड़ी कहेंगे, एकदम बुद्धि को गॉडरेज का ताला लगा हुआ, पहले बेसमझी का, अभी बाबा बता रहे गॉडरेज का ताला लगा हुआ। बाबा आकर ताला खोलते हैं। बाबा देखो कितना युक्ति रचते हैं कि मनुष्य आकर हीरे जैसा अपना जीवन बनाए। मैगजीन किताब आदि छपाते रहते हैं, बहुतों का कल्याण हो, बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। साकार में बाबा ने इस बात पे बताया था कि कुछ न कुछ साधन होना चाहिए जो लोगों को ज्ञान देने के लिए। तो फिर उस समय मैगजीन निकाली गई थी, उस समय की मैगजीन का नाम था त्रिमूर्ति, और बाबा उस मैगजीन को पढ़ते थे, पूरा पढ़ते थे। उसमें कोई भी करेक्शन होती थी तो बाबा करेक्ट भी करते थे। बहुतों का कल्याण हो तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। प्रजा बनाने अपने को बंधन से छुड़ाना का अर्थ, सर्विस तो जरूर करनी है, ईश्वरीय सर्विस भी करनी है, लौकिक काम भी करना है और अलौकिक सेवा भी करनी है। वो तो टाइम है ही ना, सुबह के टाइम अपने कितने काम होते हैं, शाम को पर्सनल, सुबह और शाम को, उस समय सबको फुर्सत है। जिसके साथ तुम लौकिक सर्विस करते हो उनको भी परिचय देते रहो। कई कई गांवों में तो क्या होता है कि वो सुबह के टाइम जैसे किसान होते हैं, खेत में काम करने वाले हैं, वो सारा दिन काम करते हैं, तो रात को आते ही 10 बजे हैं, तो कई कई स्थानों पर 10 बजे के बाद उनकी क्लास लगती है, उस समय फ्री होते हैं। तो बाबा कहते हैं जहाँ तुम लौकिक सर्विस करते हो उनको भी परिचय देते रहो। तुमको दो बाप हैं, लौकिक बाप सबका अलग है, परलौकिक बाप सबका एक है, वह है सुप्रीम। बाबा कहते हैं मेरा भी पार्ट है। अब तुम बच्चे मेरा परिचय जान गए हो, बाबा को तो सब जान गए हैं, लेकिन बाबा फिर भी कहते नंबर वन पुरुषार्थ अनुसार, अब तुम बच्चे मेरा परिचय जान गए हो, आत्मा को भी तुम जान गए हो। आत्मा के लिए कहते हैं कि ब्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, वह अकाल तत्व भी है। और फिर बाबा ने कहा ये जगह एक्यूरेट है और यहाँ पर ही अच्छा लगता है, वह अकाल तत्व भी है। आत्मा को कभी भी काल नहीं खाता, ये सिर्फ मैली और साफ होती है। आत्मा का तख्त शोभता भी ब्रिकुटी के बीच में, अगर कहीं इधर लगा दे उधर लगा दे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बाबा कहते जहाँ उसका स्थान है वहीं पर ही वो शोभता है। आत्मा का तख्त भी ब्रिकुटी के बीच में है, तो बाबा कहते आत्मा का तख्त शोभता भी ब्रिकुटी के बीच में है। तिलक की निशानी भी यहाँ देते हैं, जब तिलक लगाते तो कहाँ देते, ब्रिकुटी के बीच में देते, साइड में नहीं लगाते, और ब्रिकुटी के बीच में देते रॉयल भी लगता है। तो बाबा कहते तिलक की निशानी भी यहाँ देते हैं। बाप कहते हैं तुम क्या करना है, अपने को आपे ही राज तिलक देने के लायक बनाओ। बाबा ने बता दिया तिलक खुद ही लगाना है। बाप कहते तुम अपने को आपे ही राज तिलक देने के लायक बनाओ, ऐसे नहीं कि मैं सबको राज तिलक दूंगा। बाबा कहते मैं सबको राज तिलक दे दूं, सब राजा बन जाएंगे तो फिर क्या होगा, इसलिए हरि को अपना तिलक आप ही लगाना है। तुम अपने को दिलाओ, वैसे भी दूसरा कोई तिलक कभी कभी लगाते है, कभी टेढ़ा कुछ तिलक जब लगाते हैं ना, बहने लगाती हैं कांच के आगे जाएंगे देखेंगे, इसलिए सबको क्या करना है, अपना तिलक आप ही लगाना है। ऐसे नहीं कि मैं सबको राज तिलक दूंगा, तुम अपने को तिलक दिलाओ। बाबा जानते हैं कौन बहुत सर्विस करते हैं, मैगजीन में भी लिखत बहुत अच्छी आती है, साथ साथ योग की भी मेहनत करनी, मैगजीन में लिखो कुछ भी करो लेकिन बाबा कहते योग का भी साथ साथ मेहनत करो, साथ साथ योग की मेहनत भी करनी है जिससे विकर्म विनाश हो। दिन प्रतिदिन तुम अच्छे राजयोगी बन जाएंगे। बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया कि दिन प्रतिदिन तुम अच्छे राजयोगी बन जाएंगे। समझेंगे जैसे कि अब शरीर छूटता है हम चले जाते हैं सूक्ष्म वतन तक तो बच्चे जाते हैं। अब उस समय बाबा के टाइम पर तो शुरू में बाबा कितने बच्चों को सूक्ष्म वतन तक भेज देते थे अनुभव कराने के लिए, तो बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन तक तो बच्चे जाते हैं लेकिन मूल वतन में कब जाएंगे, जब बाप जाएंगे साथ में जाएंगे। सूक्ष्म वतन तक तो बच्चे जाते हैं, मूल वतन को भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम आत्माओं का घर है। मनुष्य शांति धाम के लिए भक्ति करते हैं, सुख धाम का तो उनको मालूम ही नहीं, शांति धाम में जाए मुक्ति लें, बाबा कहते सुख धाम कहाँ, वो तो उनको पता ही नहीं, सुख धाम का तो उनको मालूम नहीं है। स्वर्ग में जाने की शिक्षा तो कोई दे नहीं सकते, ना भेज सकते ना दे सकते, कोई मर गया कहेंगे स्वर्ग पधारा, अरे वो तो कलयुग में बैठा है पधारा कहाँ। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में जाने की शिक्षा तो कोई दे नहीं सकते बाप के सिवाय, ये है प्रवृत्ति मार्ग, दोनों को मुक्ति धाम में जाना, चाहे प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं चाहे निर्वृत्ति मार्ग वाले हैं, सबको पहले मुक्ति धाम में जाना है, दोनों को मुक्ति धाम में जाना है। वो लोग उल्टा रास्ता बताते हैं परंतु जाता तो कोई भी नहीं, कहेंगे मुक्ति धाम गया ब्रह्मलीन हो गया, कितनी बातें बताते लेकिन बाबा कहते ना ब्रह्मलीन हुआ न मुक्ति धाम में गया है। वो लोग उल्टा रास्ता बताते हैं परंतु जाता कोई भी नहीं है, सभी को पिछाड़ी में बाप ही ले जाएंगे, ये उनकी ड्यूटी है, मुक्ति धाम में ले जाने की ड्यूटी किसकी है, बाबा कहते मेरी, बाप की ही ड्यूटी है, ये उनकी ड्यूटी है। कोई अच्छी रीति पढ़कर राज्य भाग्य ले लेते हैं, बाकी सब कैसे पढ़ेंगे, सब थोड़ी राजा बन जाएंगे, तो कोई तो क्या बनेगा कोई क्या बनेगा। वे जैसे नंबर वार आते हैं वैसे नंबर वार जाएंगे और नंबर वार ही पद पाएंगे। इन बातों में जास्ती टाइम वेस्ट मत करो। अब बाबा ने फिर बताया कई बार तो कौन राजा बनेगा, कभी कभी ना बैठ जाते ये राजा बनेगा, विश्व राजन बनेंगे महाराजा बनेंगे, फिर माला बनानी शुरू कर देते। शुरू शुरू में बाबा ने भी माला बनाई, फिर देखा जिसका नंबर 2 या 3 है वो जाके लास्ट में चला जाता है, तो बाबा ने माला बनाना बंद कर दिया। फिर बच्चे भी कुछ न कुछ प्लान करते रहते हैं, ये तो जरूर बनेगा ये जरूर बनेगा, बनना तो है लेकिन बाबा की चीज में टाइम क्यों वेस्ट करते हो, पहले अपना पुरुषार्थ तो कर लो ना, बनना तो है, जिनको बनना वो बनेंगे तुम भी बनो। इन बातों में जास्ती टाइम वेस्ट मत करो। कहते हैं बाबा को याद करने की भी फुर्सत नहीं मिलती, कितनी अच्छी बात बता रहे हैं, बाकी सबके लिए फुर्सत है, खाने की फुर्सत है सब बातों की फुर्सत, लेकिन बाबा को याद करने बाबा को भी हंसी आ जाती है, कितने अच्छे बच्चे भोले वाले हैं, बाबा के मुंह पर बोल रहे हैं, बाबा को कहते बाबा हम आपको याद नहीं कर सकते फुर्सत नहीं, सामने बैठे और बाबा को कह रहा है। तो कहते हैं बाबा को याद करने की फुर्सत नहीं मिलती, फिर इसमें समय क्यों वेस्ट करते हो। बाबा ने कहा नहीं है तो छोड़ दो ना, लेकिन छोड़ भी तो नहीं सकते ना, ये तो निश्चय है कि बेहद का बाप बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, फिर दूसरे को याद करने की क्या जरूरत है? क्यों दूसरों को करते हो? दूसरे को याद करने की जरूरत ही नहीं है। तुम जानते हो कल पहले भी श्रीमद पर चलकर पावन बने थे, घड़ी घड़ी चक्र फिराते रहो। तुम्हारा नाम ही है, क्या नाम है? तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। फिर बाबा ने एक मिसाल दिया है, नार रहित का मिसाल। देखा ना, पहले जमाने में जब कुएं से पानी निकालते थे, एक गोल सा बना होता था, उसमें छोटे छोटे डब्बे लगे होते थे, वो जैसे घूमता था पानी भरता जाता था, और वो पानी एक जगह स्टोर होता, भरता फिर वो खाली करता, वहां स्टोर होता जाता, उसको नार या राहट कहते हैं। नार राहट का मिसाल, ज्ञान सागर से तुमको भरने में देरी नहीं लगती, क्योंकि वो जैसे घूमता था फटाफट डब्बा भर जाता है, फिर खाली भी फटाफट हो जाता है। तो बाबा कहते ज्ञान सागर से तुम्हें भरने में देरी नहीं लगती और खाली होने में देरी लगती। उस नार में तो एक सेकंड में खाली भी होता और जल्दी भर भी जाता, लेकिन बाबा कहते भरने में देरी नहीं लगती है, ज्ञान सागर से लेने में देरी नहीं, भरने में तो लग जाते ना, खाली होने में 84 जन्म लग जाते, खाली होने में देरी लगती है। तुम हो मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चे, क्योंकि कलप के बाद आकर मिले हो, ये पक्का निश्चय चाहिए। हम 84 जन्मों के बाद फिर से आकर बाप से मिले हैं। बाप कहते हैं जिसने पहले भक्ति की है वही पहले ज्ञान लेने के लायक भी बने हैं। और जिसने सबसे पहले भक्ति के, हाथ तो खड़ा कर दो, हैं? सबने किए ना, तो सभी तो सब बैठे हैं ना, सब भक्ति वाले ही, बहुत भक्ति किए हैं। तो बाबा कहते हैं जिसने पहले भक्ति की है वही पहले ज्ञान लेने के लायक भी बने हैं, क्योंकि भक्ति का फल चाहिए तो सदैव अपने को, फिर बाबा ने करेक्शन किया, भक्ति का फल नहीं, अभी बाबा कहते हैं सदैव अपने को भक्ति का फल अथवा वर्षे को याद करो। फिर बाबा ने क्या करेक्शन की है, फल अक्षर भक्ति मार्ग का। बाबा कहते वर्षा मिलता है, फल अक्षर भक्ति मार्ग का है। वर्षा ठीक है, बेहद बाप को याद करने से वर्षा मिलता है और कोई उपाय नहीं। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, वह समझते हैं हम भारत का प्राचीन योग सिखाते हैं, गुरु आदि कहते ना, लेकिन बाबा कहते हैं तो बाबा ही आकर सिखाते हैं। बाबा समझाते हैं वह ड्रामा अनुसार हठ योगी बन जाते हैं। राजयोग अब तुम ही सीखते हो, क्योंकि अब संगम युग है, उनका धर्म अलग है। वास्तव में उनको गुरु भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजयोग सीखना है तो वो गुरु नहीं सिखा सकते ना, तो बाबा सिखाते, परंतु ये भी ड्रामा अनुसार फिर भी करेंगे जरूर। बाबा कहते किया है, करेंगे भी जरूर, उनका ड्रामा में पार्ट है, फिर भी ड्रामा अनुसार करेंगे जरूर। तुम बच्चों को अब राइटर्स बनना है, रिलीजन में ही ताकत है। तुमको जो मैं देवी देवता बनाता हूँ वह धर्म बहुत सुख देने वाला। बाबा कहते मैं तुमको देवी देवता बनाता हूँ वह धर्म बहुत सुख देने वाला है। मेरी ताकत भी उनको मिलती है जो मेरे से योग लगाते हैं। तो बाप जो खुद धर्म स्थापन करते हैं उसमें बहुत ताकत है। तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप इस धर्म की महिमा करते हैं कि इसमें बहुत माइट है। ये जो धर्म बाबा स्थापन करते हैं इसमें सारे विश्व के मालिक भी बनते हैं और ताकत भी है और माइट भी है। तो बाबा कहते हैं ऑल माइटी बाबा से माइट बहुतों को मिलती है। शुरू शुरू में बाबा को हमेशा कहते थे ऑलमाइटी बाबा। तो ऑलमाइटी बाबा से बच्चों को बहुत ताकत मिलती थी। बाबा देखते थे ये बच्चा सर्विसेबल है, बहुत कुछ कर सकता है, तो बाबा गुप्त में उनको बहुत मदद करते थे। तो बाबा कहते ऑलमाइटी बाबा से सबको माइट मिलती है। वास्तव में माइट तो सबको मिलती है, परंतु नंबर वन तुमको जितनी माइट चाहिए उतना बाबा से लो। बाबा कहते मैं दे रहा हूँ लो ना, लेकिन लेते नहीं है, थोड़ा लिया फिर छुट्टे। बाबा कहते जितनी चाहिए लो, लेकिन लेते हैं नंबर वन, तुमको जितनी माइट चाहिए बाबा से लो। फिर दैवी गुण की सब्जेक्ट भी चाहिए, ताकत ले ली लेकिन दैवी गुण धारण नहीं किए तो वो भी बाबा को अच्छा नहीं लगता था। तो बाबा कहते फिर दैवी गुणों की सब्जेक्ट भी चाहिए, किसको तंग नहीं करना, दुख नहीं देना। कईयों की एक आदत होती, प्लान करते रहते, आज हम जाएंगे ना, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे कर, सुबह उठते ही अमृत वेले से प्लानिंग शुरू। बाबा को याद तो क्या करना, तंग करने की प्लानिंग शुरू हो जाती है। तो बाबा कहते किसी को तंग नहीं करना, दुख नहीं देना, ये कभी किसको उल्टा सुल्टा शब्द नहीं कहते। बाबा ने कभी कहा किसी को उल्टा सुल्टा, बाबा को पता होता था ये बच्चे ने ऐसा काम किया। बाबा उसको प्यार करते, प्यार करके उसको समझाते थे, उसको रियलाइज होता था बाबा आज मेरे से गलती हो गई। तो बाबा कहते ये कभी किसी को उल्टा शब्द नहीं कहेंगे, जानते हैं जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। बाबा ने ना कभी जोर से बोला, ना किसी को तंग किया, ना कभी किसी को उल्टा सुल्टा बोला। तो बाबा का ही लक्ष्य था कि जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख दूसरे करेंगे। आश्रय अवगुणों से दैवी गुणों में आना है, देखना है हम किसको दुख तो नहीं देते। ऐसे कोई नहीं है जो किसको दुख नहीं देता होगा, कुछ न कुछ करती रहते ना, कुछ न कुछ भूले होती रहती हैं। वह अवस्था तो अंत में ही आएगी जो मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख ना दे। इस समय हम सब पुरुषार्थी अवस्था में हैं, हर बात नंबर वन पुरुषार्थ अनुसार होती है। सभी पुरुषार्थ सुख के लिए ही करते हैं, परंतु बाप बेगर कोई सुख दे न सके। देखा जाता है कि सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहरात थे, वह सब कहाँ से आए। बाबा कहते कहाँ से आए, पे कहाँ गए, वह सब कहाँ से आए, कैसे साहूकार बने। सारा दिन इस पढ़ाई के चिंतन में रहना चाहिए, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान पवित्र बनना है। तुमने ही तो ये पुरुषार्थ किया, बाबा कहते पहले भी किया था, अभी भी करना है, फिर भी करना है, तुमने ही तो ये पुरुषार्थ किया है, तब तुम माला बनी है। बाबा कहते हैं, बाबा याद दिला रहे हैं कि तुम्हारी माला है, तुम्हारा ही पुरुषार्थ है, तब तुम माला बनी है। कलप कलप ये माला बनती रहती है। माला किसकी यादगार है, बोलो किसकी यादगार है, हमारी यादगार है, ब्राह्मणों की यादगार है। तो बाबा कहते माला किसकी यादगार है ये भी तुम जानते हो। वह तो माला का सिमरन कर बहुत मस्त हो जाते, भक्तों को देखो ना पूरा टाइम माला सिमरते रहते हैं, कपड़े के अंदर माला डाली हुई, हाथ चलता रहता है, मुख से राम राम कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। वो माला सिमरन करते हैं ना तो इतने मस्ती में चले जाते, उनको कोई बात करो सुनते हुए भी नहीं सुनते। तो बाबा कहते वो तो माला सिमरन कर बहुत मस्त हो जाते हैं। भक्ति में क्या होता है और ज्ञान में क्या होता है ये भी तुम ही जानते हो कि भक्ति में हमने क्या किया और ज्ञान मार्ग में बाबा क्या बता रहे हैं, ये भी बाबा कहते तुम जानते हो। तुम किसको भी समझा सकते हो। पुरुषार्थ करते करते आखिरीन पिछाड़ी की रिजल्ट कल पहले मुआफिक निकल आएगी। बाबा ने बहुत अच्छा बताया कि निकलना रिजल्ट आएगी कलप पहले मुआफिक। फिर बाबा बार बार नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार बताते ना, तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करते करते आखिरीन पिछाड़ी की रिजल्ट कलप पहले मौफिक निकल आएगी, हर एक अपनी जांच करते रहे। तुम समझते हो हमको ये बनना है, पुरुषार्थ की मार्जन भी मिली है। अब देखो ये लाइन को पक्का करो, कई बच्चे कहते हम पहले क्यों नहीं आए, हम देरी से क्यों आए, इतने उलाने देते हैं बाबा को। बाबा कहते इतना टाइम है, इतनी मार्जिन मिल रही, पहले आते तो कई तो पहले आने वाले छोड़ के चले गए, समझा ही नहीं। तुम अभी पीछे आए हो, एक तो पीछे आने वालों को लिफ्ट मिलती है, शुरू में जो ज्ञान मिला उस ज्ञान को मनन करते करते हमारे बाबा ने दादियों ने माखन निकाल दिया, आपको तो सबसे तरावती माल मिल रहा है और मार्जिन भी है। खुश होना चाहिए कि अभी भी हम समय पर आए हैं, बाबा हमको इतना दे रहे हैं। ये कभी नहीं सोचना हम देरी से क्यों आए, देरी वाले भी बाबा कहते गैलप कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं पुरुषार्थ की मार्जिन मिली है। नंबर वन, पुरुषार्थ अनुसार बाप भी तुम्हारा स्वागत करते हैं। तुम बच्चे जो स्वागत करते हो उससे जास्ती स्वागत कौन करता है, उससे जास्ती स्वागत तो बाप कर। तुम क्या करोगे, आएंगे बाबा के पास आते हैं, दादियों के पास आते हैं, फूल ले आते हैं, फिर क्या करते, फूल नहीं होता ना, दूसरे से मांग के उठा के वही का वही फूल चढ़ा देते हैं। कई बार हम देखते हैं अरे तुम नहीं लाए तो कम से कम सामने आके दृष्टि लो, लेकिन उसको फूल देना ही है, पीछे से वही फूल उठाया और वही आके दे दिया, फिर वही फूल उठाया फिर वही उठा दिया, कोई टूटा फूटा फूल लेके आ जाते। तो बाबा कहते ये स्वागत क्या, फिर भी दादियां बाबा बच्चों के प्यार को स्वीकार कर लेती है। स्वागत में क्या करेगी, चुन्नी उठा के ले आएंगे, एक कोई माला ले आएंगे, कोई चीज इधर उधर की चीजें ले आएंगे। बाबा कहते भल ऐसे नहीं करो, लेकिन मैं जो स्वागत करता हूँ मेरे जैसा स्वागत और कोई नहीं कर सकता। कभी कभी होता है बस फूल देना ही, अरे नहीं दिया तो क्या हुआ, लेकिन फूल इकट्ठा करना ही है, पीछे से कहीं से उठा के ले आएंगे। भल प्यार है करते हैं, लेकिन सामने आके दृष्टि लो उसमें ही सब फूल की सारी विशेषताएं आ जाएंगी। तो बाबा कहते हैं नंबर वन पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारा बाप ही स्वागत करते हैं। तुम बच्चे जो स्वागत करते हो उससे जास्ती स्वागत बाप करते हैं। बाप का धंधा ही है तुम्हारा स्वागत करना। आप कभी सुना ऐसा, बाप का धंधा ही है तुम्हारा स्वागत करना, अर्थात विश्व का मालिक बनाना। बाप का धंधा ही है तुम्हारा स्वागत करना। स्वागत माना, स्वागत माना सदगति, ये सबसे ऊंचा स्वागत है। दुनिया में भी स्वागत करेंगे, छोटी सी गिफ्ट पकड़ा देते, लेकिन बाबा कितनी बड़ी गिफ्ट देते हैं, विश्व का मालिक बना देते हैं, सदगति कर देते हैं। स्वागत माना सदगति, ये सबसे ऊंचा स्वागत है। तुम सबका, तो अब सुनो लास्ट लाइन, तुम सबका स्वागत करने बाप आते हैं। बाबा स्वागत करते हैं, तुम सबका स्वागत करने बाप आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता, बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। और हम क्या कहें, बाबा आपका स्वागत है, कहेंगे बोलो सब, बाबा आपका स्वागत है, आप हमारे पास आए, कितना बड़ा भाग्य है, तो खुशी होनी चाहिए। बाबा भी बच्चों का स्वागत करते हैं। अच्छा भी सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सा, पहला है बहुतों की आशीर्वाद लेने के लिए कल्याणकारी बनना है। बहुतों की आशीर्वाद लेने के लिए कल्याणकारी बनना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी अपने को बंधन से मुक्त कर सुबह शाम ईश्वरीय सेवा जरूर करनी है। दूसरा, दूसरी बातों में अपना समय वेस्ट ना कर बाप को याद कर माइट लेनी है। दूसरी बातों में अपना समय वेस्ट ना कर बाप को याद कर माइट लेनी है, सत के संग में रहना है। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देने का पुरुषार्थ करना, मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देने का ही पुरुषार्थ करना है। वरदान, पवित्रता के वरदान को निजी संस्कार बनाकर पवित्र जीवन बनाने वाले मेहनत मुक्त भव। पवित्रता के वरदान को निजी संस्कार बनाकर पवित्र जीवन बनाने वाले मेहनत मुक्त भव। कई बच्चों को पवित्रता में मेहनत लगती है, इससे सिद्ध है कि वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया। पवित्रता ही हमारा जन्म का वरदान है, तो बाबा कहती हैं इससे सिद्ध है कि वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया है। वरदान में मेहनत नहीं होती। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म का पहला वरदान है पवित्र भाव, योगी भाव। जैसे जन्म के संस्कार बहुत पक्के होते हैं, तो पवित्रता ब्राह्मण जन्म का आदि संस्कार और निजी संस्कार है। इसी समिति से पवित्र जीवन बनाओ, मेहनत से मुक्त बनो। स्लोगन, ट्रस्टी वह है जिसमें सेवा की शुद्ध भावना है। ट्रस्टी वह है जिसमें सेवा की शुद्ध भावना। सेवा करते ना, बार बार आता मेरा नाम हो, मेरा मान हो, ये हो। बाबा कहते बाबा की सेवा करते ना, तो बाबा कहते ट्रस्टी वह है जिसमें सेवा की शुद्ध भावना है। तो आज का व्यक्ति इशारा सुनेंगे। आज है 20 तारीख, संस्कार मिलन का चल रहा ना, 20 तारीख का व्यक्ति इशारा। संस्कार मिलन की रास करने के लिए अपनी नेचर को इजी और एक्टिव बनाओ। संस्कार मिलन की रास करने के लिए अपने नेचर को इजी और एक्टिव बनाओ। इजी अर्थात अपने पुरुषार्थ में संस्कारों में भारीपन ना हो। इजी है तो एक्टिव वे, इजी है तो एक्टिव रहेगा, इजी नहीं है तो फिर क्या होता है, डिफिकल्टी आती है ना। तो बाबा कहते इजी है तो एक्टिव है। अगर खुद इजी नहीं बनते तो मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। फिर अपने संस्कार, अपनी कमजोरियां मुश्किल के रूप में देखने में आती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। इजी होते हैं तो हर बात सहज हो जाती है और हर कार्य करना भी सहज हो जाता है। कहीं पर हार्ड बनते ना तो हर समय कठिनाइयां आती रहती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मोल्ड भी करो, इजी भी बनो और हल्के होके चलो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे। कई भाई बहने एक रात के लिए आए, हाथ खड़ा करो। और साथ साथ आप सबको मालूम हो कि नीचे शांतिवन में योग बटियां, राजयोग शिविर चल रहे हैं। हमारी विशेष टीचर बहनें भी आई हुई हैं। अनीता बहन हाथ खड़ा करो, जरा खड़े हो जाओ। अनीता बहन, कविता बहन और कौन है टीचर बहन जो आई हैं? हाँ, आप भी खड़े हो जाओ ताकि सब देखें। ताली तो बजाओ, बहुत मेहनत करती हैं ये सब, बहुत सेवा कर रही हैं। अनीता बहन, कविता बहन को नीचे के जो कार्यक्रम होते हैं ना, चारों तरफ चलते हैं। मानसरोवर में भी चल रहा है, मनमोहिनी में भी चल रहा है, आनंद सरोवर में भी चल रहा है, शांतिवन में भी चल रहा है। तो ये बहनें आती हैं, कोई 15 दिन 20 दिन के लिए आते हैं, इन सब सेवाओं में अपना सहयोग देके आती हैं। सेंटर की सेवा को सेट करके यहाँ पर आती हैं। बहुत स्वागत है आपका, सदा आते ही रहना है। जोर से ताली बजाओ, आते रहो। आपको देख करके बाबा भी खुश होता है और बाबा के बच्चे भी खुश होते हैं। ये हमारी अनीता बहन चंडीगढ़ के किस सेक्टर का संभालते हैं? 17 सेक्टर। और कविता बहन 43, वहां क्योंकि चंडीगढ़ में बहुत सेक्टर हैं, एक एक सेक्टर में सेंटर खोलते जो वो भी कमी है, तो कई सेक्टर हैं वहां पर, कितनी हमारी बहनें हैं। अच्छा।